नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके लिए एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम लेकर आए हैं जो कि नारी शक्ति से रिलेट करता है और नारी सशक्तिकरण यानी कि वुमेन्स एम्पावरमेंट। 8 मार्च को वुमेन्स एम्पावरमेंट दिवस मनाया जाता है और आज प्रश्न ये उठता है कि नारी अपने आप में क्या एम्पावर्ड नहीं है, क्या हमें इस दिन को मनाना जरूरी है और इस दिन के मनाने से नारी जगत में जिसको हमेशा से सृष्टि ने देवी शक्ति की तरह पूजा भी करा और आज के इस मॉडर्न युग में, आज के इस वैज्ञानिक साइंटिफिक युग में जहां की कंप्यूटर्स की हम बात करते हैं, जहां हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इस समय पर नारी अपने आप में कितनी सशक्त है और कैसे उसने अपने आप के इस सशक्तिकरण को यानी कि अपने आप को एम्पावर किया है और किस किस तरीके से वो इस एम्पावरमेंट पर पहुंची है, आज इसी बात के ऊपर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हाजिर हैं आशिमा सचदेव, जिन्होंने की मास्टर्स किया हुआ है इंटरनेशनल बिजनेस में और रिसर्च कर रही है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। आगे हैं डॉक्टर उषा किरण, प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक एनेस्थीसिया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। और हमारे साथ आगे हैं मिसेस सुनीता अग्रवाल, जो कि एक गृहिणी है, होममेकर। और हमारे साथ और भी हैं निधि खट्टर, जो कि टीचर्स हैं मदर्स इंटरनेशनल स्कूल में और वॉलंटियर कर रही हैं पिछले 4 साल से। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आशिमा जी से पूछना चाहूंगी, आशिमा जी आप बताएं कि नारी सशक्तिकरण यानी कि वुमेन्स एम्पावरमेंट को कैसे समझती हैं?
मेरे ख्याल से वुमेन्स एम्पावरमेंट अगर देखा जाए तो इट शुड बी अ कम्प्लीट पैकेज, जिसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एज वेल एज स्पिरिचुअल एलिमेंट होता है। यूजुअली इन द वर्ल्ड, यू नो, डेवलपमेंट वर्ल्ड, हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल के ऊपर तो काफी प्रेशर, यू नो, फोकस करते हैं, बट जो स्पिरिचुअल एलिमेंट है वो भुला दिया जाता है। एंड समटाइम्स आई ऑल्सो फील कि जो स्पिरिचुअल एलिमेंट है उसको एम्पावर करेंगे तो बाकी 3 ऑटोमेटिकली एम्पावर हो जाएंगे।
नारी का जो ये बोध है, ये जो आध्यात्म बोध है, आप क्या समझती हैं ये एक प्राकृतिक है या इसको पाया जाता है या समाज इसे देता है या पुरुष समाज इसे देता है या वो अपने आप ही इसको डिस्कवर करती है, यानी कि अपने अंदर से ही निकलती है?
ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने, क्योंकि आमतौर पे आज के जमाने में जो कॉम्प्लेक्स आया है वो ये आया है कि हम वुमेन हैं। क्यों भी ये कॉम्प्लेक्स क्यों आ गया, हम वुमेन हैं? नहीं, हमको उस निगाह से देखा नहीं जाता। घर के अंदर बहन और भाई कंपटीशन में रहते हैं, मम्मी आप बेटे के लिए ये लेके आते हो, मेरे लिए नहीं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नारी को एक प्राचीन भारत की जब हम सभ्यता देखते हैं तो नारी को एक महानता दी जाती थी। मुझे अभी तक याद है जब घर में बेटी पैदा होती थी तो कहते थे लक्ष्मी आई है, देवी आई है। शायद ये इसीलिए जो आपने कहा कि नारी के अंदर एक अंदरूनी शक्ति है। अगर आप मुझे टाइम दे तो मैं बताना चाहूंगी कैसे, क्योंकि एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस बात को सिद्ध किया जा सकता है। और ये जो हम लोग मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जब क्रोमोसोम नंबर की हम बात करते हैं और क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, वुमेन के अंदर डबल एक्स क्रोमोसोम होता है और जो मेल पार्ट है उसके अंदर एक एक्स और एक वाई होता है। वाई का मतलब ये हुआ कि एक्स में से अगर आप 4th लिम्ब हटा दें तो वो उसमें से माइनस होने के बाद वाई बनता है। दैट मींस 1/4 ऑफ ए क्रोमोसोम पहले ही मिसिंग है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है कि मेडिकल ग्राउंड्स के अंदर भी अगर एक ही वेट के बच्चे पैदा होते हैं जिसमें से एक फीमेल चाइल्ड है और एक मेल चाइल्ड है, एक ही वेट है, एक जैसी बीमारी है, तो फीमेल के अंदर अपनी उस बीमारी को भुगतने की शक्ति ज्यादा है और उसके बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द मेल चाइल्ड। यानी उसके अंदर से ही एक जिसे कहते हैं ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है कि फिजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल पावर उसके अंदर अधिक है।
निधि जी आप बताइए, आप एक टीचर रहे हैं और आप बहुत छोटे छोटे बच्चों के साथ भी काम करते हैं और आपने अपने जीवन में आध्यात्म को किस तरह से बच्चों के साथ खेलते हुए करते हुए किस तरह से आप अपने आप को इस पावर को महसूस करती हैं?
मुझे वाकई में बहुत प्रॉब्लम रहा था शुरू में एज अ टीचर, जब मैं स्पिरिचुअली बहुत ग्रोन अप नहीं थी,
लेकिन कुछ टाइम से जब से ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में आई हूं तो मैंने देखा है इट इज अ वेरी पावरफुल स्पिरिचुअल बैकग्राउंड बिकॉज इट गिव्स यू अ वेरी गुड बैकबोन टू रियली फाइट योर डे टू डे स्ट्रगल इवन यू नो अगर एक छोटे से बच्चे के साथ भी आपको डील करना है इट इज अ ग्रेट स्ट्रगल.
एग्जाम्पल दे सकती
हूँ? जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, पहले मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाती थी क्योंकि एज अ टीचर जब एक बच्चे के साथ आप वो रैपिड नहीं बना सकते हैं, जो आप बच्चे के अंदर ट्रांसमिट करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो यू रियली नीड अ परफेक्शन. बट पहले बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाती थी जो अब नहीं है.
एंड रियली बोलते थे तो आपको दिक्कत होती थी उसको अपनाने में, समझने में,
या बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था अपनी टॉलरेंस को करेक्ट करने के, और अब ये बहुत सहजता से हो जाता है. अब मुझे लगता है कि आई एम एंजॉइंग दिस एंड दिस आई रियली रियली बिलीव दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म जिसमें मैं डे टू डे ग्रोथ कर रही हूँ, रादर मोमेंट टू मोमेंट. आई फील देयर इज सम ग्रेट पावर ऑल द टाइम विद मी एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू दैट पावर. आई रियली वॉन्ट कि हर वुमेन उस पावर को जरूर पहचाने. इट इज देयर विद इन, हर औरत के अंदर है, किंतु हाँ उसकी खोज वो तो खुद को ही करनी पड़ेगी. उसके लिए आपको स्वयं एक हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा.
और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि नारी को वैसे भी धुरी कहा गया है, परिवार की धुरी. तो अगर वो इस ज्ञान को अपने अंदर समाकर चलती है परिवार के अंदर, तो वो सभी को मार्गदर्शन कर सकती है, दिशा दिखा सकती है. क्योंकि हर वक्त बच्चे खासकर अपनी नई नई प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं, और स्पेशली जो मेरा बड़ा बेटा है वो एडोलेसेंट एज में है, तो उसके पास इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि टीवी में वो कुछ देखते हैं और उनके पास इतने क्वेश्चंस होते हैं. पर जब हम उसको ज्ञान के आधार से समझाते हैं तो बहुत ही सहज हो जाता है और बहुत ही परफेक्शन की तरफ हम लोग जा रहे हैं.
और आपको लगता है ये जो बोध आपके अंदर से जब आप नए तरीके से अपने बच्चे को समझा सकती हैं, जो आपके अंदर उजागर हुआ, आपने क्या इसको पहले कभी देखा ही नहीं था, समझा ही नहीं था, और अभी आप मेडिटेशन यानी ध्यान के माध्यम से आप उस चीज को प्रकाशित कर पाई हैं?
हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं. ज्ञान के आधार और ध्यान के आधार से दोनों चीजें जरूरी हैं. ज्ञान के संग ध्यान भी चाहिए. यहाँ पर उन दोनों को संग में लेकर जब हमने उन बातों को समझाया तो ऐसा लगता था कि जैसे बच्चे बड़े सेटिस्फाइड हैं, दे आर वेरी सेटिस्फाइड. उनको हर चीज का मतलब हमने ज्ञान के आधार से समझाया.
तो आपको क्या लगता है कि ये जो पावर आप अपने आप को एक मातृत्व का जो शक्ति है आपके अंदर और एक नारी की जो शक्ति है, ये हर माँ अपने हिसाब से अपने तरीके से इसको जब अपने अंदर समा सकती है तो ही ये बात हो सकती है? क्या बाहर की इतनी इन्फॉर्मेशन, आईटी इन्फॉर्मेशन, आज टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई, क्या वो सब चीजें हमें इस चीज को एम्पावर करती हैं या नहीं करती है? आप कैसे समझते हैं?
मैं समझती हूं कि वो पावर करती हैं पर सही दिशा में नहीं करती हैं. हम उस चीज को सपोज करिए आप मोबाइल है, हम उसको गलत यूज भी कर रहे हैं ना. टेक्नोलॉजी है वो, पर अगर हम उसको सही रीति से करें तो हम उसको बहुत आगे ले जा सकते हैं, एडवांस कर सकते हैं, हमारा कंट्री बहुत प्रोग्रेस कर सकता है. ब्रेन ड्रेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा हमें. तो वो चीजें मैं समझती हूँ जब हम ज्ञान में, स्पेशली राजयोग मेडिटेशन में हम आते हैं तो वो स्पष्ट है, हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है यहाँ, क्योंकि प्रैक्टिकल मेडिटेशन है.
डॉक्टर उषा किरण, आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि इस पावर को उन्होंने अपने अपने पूरे समाज में अपने बच्चों के साथ जिस तरह से किया, टेक्नोलॉजी जैसे आपने बताया कि क्रोमोसोम्स का नारी के अंदर प्राकृतिक रूप से एक अलग महत्वता है उसकी, और उस प्राकृतिक रूप को जब आपने अपने नॉलेज से उसको जोड़ा तो, और ध्यान के साथ उसको जब हम जोड़ते हैं, तो ये जो बोध है, इस बोध से क्या आज के समय पे इस बात की बोध आप अपने कार्य क्षेत्र में और लोगों को दे पाते हैं, और कैसे दे पाते हैं?
ये जो बात अभी चल रही थी बच्चों के ऊपर, क्योंकि आज के समय में जो मेजर प्रॉब्लम आ गई है एक एम्बिशियस वुमेन के लिए, वो अपने कैरियर में भी आगे जाना चाहती है और अपने साथ में बच्चों को भी आगे बहुत महान बनाना चाहती है. इसमें कोई दो राय नहीं है, जब स्वयं इतनी आगे बढ़ रही है तो बच्चा और भी उससे आगे बढ़ना चाहिए, परंतु वो अपने आप को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती है. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ. मेरे भी हॉस्पिटल में मेरी ही एक कुलीग, और जब वो बहुत परेशान होकर अगले दिन आई तो बोली मैं क्या करूं, मेरा 9 साल का बच्चा है. जब मैं घर पहुंची, मैंने अपनी गाड़ी लगाई तो मेरे घर के बाहर शोर मचा हुआ था. जो लगा मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे घर के पास शोर कैसे है, तो मेरा अपना ही बच्चा जो उसको ट्यूटर पढ़ाने आई थी उसके बाल खींचकर बाहर ले आया और सब दुनिया इकट्ठी हो गई। और वो अपने बच्चे के लिए हर साइकेट्रिस्ट के पास जाती है, हर साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है कि मेरा बच्चा इतना गुस्सा क्यों करता है, वो हमसे भी लड़ता है औरों से भी लड़ता है। तो ये सब बातें सिद्ध करती हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने आप में एक सेल्फ में आध्यात्मिकता लेकर सेल्फ एम्पावरमेंट नहीं कर पाए हैं। और यही रीजन है कि जो हम बच्चे को देना चाहते थे सहनशीलता,
इस बात
दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, इस वो नहीं कर पाए हैं।
सहनशीलता के ऊपर हम दोबारा लौटेंगे, इसी के ऊपर हम चर्चा जारी रखेंगे। मगर दर्शकों आप कहीं मत जाइए, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इसी समय पर, और इस सहनशीलता को उस सहनशीलता से आप भी जोड़े रखें और सहनशीलता से अपने जगह पर बैठे रहें और हमारा प्रोग्राम आगे देखते रहें।
ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें।
दर्शकों ब्रेक के बाद आपका दोबारा स्वागत है और हम उस चर्चा को जारी रखते हुए जिसमें हम सहनशीलता की बात कर रहे थे, मैं पूछना चाहूंगी निधि जी से, आप बताइए कि इस सहनशीलता को आपने अपने जीवन में बच्चों के साथ खेलते हुए काफी बार एक्सपीरियंस किया होगा, और मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा एग्जांपल दें और बताइए कि ये जो एम्पावरमेंट को आपने ध्यान के माध्यम से अपने आप में लाए हैं और उसको आपने कैसे इसको इस चीज को आप हैंडल करेंगे जिस तरह से इन्होंने एग्जांपल दिया।
जैसे अभी डॉक्टर उषा ने बताया, सहनशीलता जो हम अपने अंदर पहले लाएंगे वही हम अपने बच्चों पे रिफ्लेक्ट कर सकेंगे, ये मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। जैसे आप हैं आपके बच्चे वैसे ही बनते हैं, जैसे हम उनके लिए एग्जाम्पलरी बनते हैं वो हमको फॉलो करते रहते हैं। हाँ ये जरूर है अगर हम चेंज हो रहे हैं एंड इफ यू एक्सपेक्ट आवर चिल्ड्रन टू चेंज एज सूनर एंड राइट एट दैट पॉइंट, दैट इज अगेन नॉट अ वेरी बैलेंसिंग थिंग। हमें पहले ये देखना है कि हम कितनी टाइम के बाद, जैसे अगर मैं अपने आप को लूं तो मैं बहुत, जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड थी, स्कूल बैलेंस करना, घर बैलेंस करना, और फिर आजकल का एनवायरमेंट जो वायुमंडल है जिसमें बच्चे आपके हर डे टू डे कोई ना कोई डिमांड करते हैं, उसमें अपने आप को बैलेंस करना, अपनी टॉलरेंस को कलेक्ट करके रखना बहुत मुश्किल था। कुछ 6-7 महीने पहले बहुत मुश्किल था, लेकिन अब मुश्किल नहीं है, चैलेंजिंग है और बहुत स्वीट चैलेंज है। यही बात अब बच्चों में धीरे धीरे आ रही है। हाँ थोड़ा बहुत लड़ते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं आपस में लड़ते हैं, लेकिन उनको बताने का तरीका, उनको समझाने का, खुद को आगे खुद को बढ़ाने का और उनको बढ़ाने का तरीका, ये सब अंदर से एक सहनशीलता जिसको जो एक एम्पावरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, आई थिंक दैट इज प्लेइंग अ वाइटल
रोल। सहनशीलता को आपने जो अपने इसके साथ में महसूस किया, मैं आशिमा जी को पूछना चाहूंगी, क्या आपने इस सहनशीलता से अपने ऊपर गुस्से का नियंत्रण पा लिया?
व्हेन आई लुक एट द सहनशीलता का जो एस्पेक्ट है उसमें जो मुझे इम्पोर्टेंट चीज नजर आती है वो ये कि आप कितना, जो जितने आपके आसपास लोग हैं, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपके वर्क में है या आप किधर भी बाहर जाते हैं, आप उनसे कितना कनेक्ट कर पाते हैं। बिकॉज अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट करना आसान रहता है, पर द मोमेंट यू गेट आउट ऑफ योर फैमिली और फील्ड में होते हैं, तो क्या मैं उनको भी उसी प्यार की नजर से देख सकती हूँ? सो आई डोंट थिंक सहनशीलता को ही लेके मैं वर्क करूं, पर एक अगर हम अपने जो स्पिरिचुअलिटी हम लोग को सिखाती है कि जो प्यार मेरे में है वो मेरे फैमिली में है, वही मैं सबके साथ इक्वल कर सकूं, तो सहनशीलता विल बी एन ऑटोमेटिक रिजल्ट ऑफ इट, देन आई डोंट नीड टू वर्क ऑन दैट एस्पेक्ट अलग।
ये जो आपने सहनशीलता की बात करी कि आप अपने अंदर जो आपके अंदर प्यार है उसी प्यार को आप और सबसे बांटना चाहती हैं, नारी एम्पावरमेंट यानी कि वुमेन्स एम्पावरमेंट में अगर हम देखें तो आज इकोनॉमिकली भी एक पॉइंट ऐसा निकलता है जहां पर हम सोचते हैं कि अगर हमने पैसे कमा लिए हैं और हमने कोई पोजीशन अपना लिया है तो वहां पर हम अपने आप को समझते हैं कि हमने एक पावर हमने अंदर अपने पा लिया है। बट क्या आप समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी यानी कि स्पिरिचुअल पावर इज दैट सो इम्पॉर्टेंट, क्या वो इतना जरूरी है? इस पावर के ऊपर भी क्या ये पावर है जिसके ऊपर आपने क्या इसको महसूस किया है? क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?
यही जो मैंने शुरुआत में बोला था कि कैसे जो स्पिरिचुअलिटी है इकोनॉमिक और सोशल और बाकी सब पावर्स का बेस है, तो उसमें मेरा मतलब यही था कि यू नो अगर आपको कुछ पोजीशन भी मिल जाता है या आपकी क्वालिफिकेशन भी हो जाता है, बट इफ यू आर स्पिरिचुअल एंड यू नो दैट योर इनर सेल्फ इज डिटैच्ड फ्रॉम द नेम एंड द लेबल एंड द क्वालिफिकेशन दैट यू हैव गॉट, तो वो आपका ऑटोमेटिकली एम्पावर्ड है। यू नो आप उसके साथ अपने आप को लिंक नहीं कर रहे, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा एक टूल होता है।
यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्पिरिचुअल पावर एक अलग किस्म का पावर है जो कि इन सारे पावर्स को एम्पावर करता है। नारी के अपने अंदर जो सौंदर्य है, जो रोमांच है, जो पूर्णता है, जो कैपेसिटी है कि वो जो पूरे संसार को वो दे सकती है, यानी कि यहां तक भी कि पुरुष का जन्म भी नारी के अंतकरण से ही होता है, और उस अंतकरण में जब उस चीज को सब अपने आप में समझते हैं तो हम सब इस चीज को एक साथ में बढ़ा सकते हैं इस ध्यान की पावर से। मैं इस बात के ऊपर आपसे पूछना चाहूंगी निधि जी, कि आपने इस पावर को जैसे आपने पढ़ाई लिखाई करी, उसके बाद जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आई, और प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद फिर आपकी बिजनेस, आपके हस्बैंड से बिजनेस में आपकी उनकी शादी हुई, और इसमें आने के बाद पर्सनली आपने अपने पर्सनल रिलेशनशिप में इस चीज को आपने कैसे फील किया?
नारी के लिए पर्सनल रिलेशनशिप मुझे लगता है सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी सब रिलेशनशिप्स ही बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, पर जो बेसिक हैप्पीनेस है वो पर्सनल रिलेशनशिप से स्टार्ट होता है। ये पर्सनल रिलेशनशिप आप माँ के साथ कह सकते हैं, एक क्लोज भाई के साथ कह सकते हैं, एक बेटे या बेटी के साथ, और फिर पति के साथ। शादी कर मैं बहुत प्रसन्न थी, बहुत खुश थी, बहुत अच्छे परिवार में रह चुकी हूँ, और आई एम लकी टू से दैट आई हैव गॉट अ वेरी लविंग हस्बैंड ऑल्सो एंड वेरी सपोर्टिव। बट जब से ये ध्यान का ज्ञान मुझे लगा, मैंने इसमें ब्रह्मा कुमारीज की राजयोग मेडिटेशन में जब से मैंने इसको अडेप्ट किया, बहुत ब्यूटिफुल चेंज जो मैंने देखा। यू चेंज योर सेल्फ फ्रॉम अटैचमेंट टू अ रियल लव, जिसको आज तक गीता, भगवद गीता में भी बताया गया है। अटैचमेंट और लव में जहां हम कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं, हमें लगता है अटैचमेंट है तो ये लव ही है, बट बेसिकली लव इज समथिंग वेरी प्योर, इट इज वेरी एम्पावरिंग, इट इज वेरी एनरिचिंग, जो एक ह्यूमन बीइंग को, एक औरत को, और उसी तरह से एक मर्द को भी एनरिच बनाता है। ये लव राजयोगा से आया है। इट्स जस्ट नॉट द एम्पावरमेंट, इट्स जस्ट द हैप्पीनेस ऑफ द लाइफ। सो यही से सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। जैसे आशिमा जी ने बोला कि सहनशीलता औरों के लिए भी होनी चाहिए, मैं समझती हूँ सहनशीलता एक सच्ची सहनशीलता वही है जो एक प्यार से निकली है। जब आप अपने सहयोगियों से बाहर से प्यार से पॉजिटिविटी से उनको देखेंगे तो सहनशीलता ऑटोमेटिकली आ जाती है और वो बहुत लास्टिंग रहती है। तो
ये प्रेम, ये प्यार जो आप कह रही हैं, ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल तरीके से भी समझा जाता है कभी कभी समाज में, और नारी के लिए पर्टिकुलरली इसके ऊपर बहुत सी लांछन नारी को हमेशा से सहना पड़ा है। और आज हम इसके ऊपर थोड़ा सा इसको अलग ढंग से देखेंगे कि आपने जैसे कहा कि प्यार और इसकी जागरूकता जो आपके अंदर आई ध्यान से, और इस ध्यान से जब आपने इसको अपने आप में महसूस किया, क्या यहीं से आपने उस, जैसे आशिमा जी ने कहा कि वो सबको बांटने की जो तैयारी उनके अंदर आई, और ध्यान किस रूप आपको इसमें और उठाया, ध्यान ने आपको इसके ऊपर कुछ बताई?
हाँ, ध्यान से सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मुझे लगी सुंदरता। जब हम बोलते हैं शिव ही सुंदर है, शिव ही शक्ति है, पर सुंदरता जो हमें दिखती नहीं है, आप ऐसे नहीं थे, आपने ऐसे क्यों किया, या मेरे बच्चे ने वैसे क्यों नहीं किया जैसे उसके बच्चे ने किया, या मेरा घर ऐसा क्यों नहीं है, ये सब बातें तब हैं जब कहीं ना कहीं आपके हृदय में असुंदरता है। और यही सुंदरता उस प्योर लव से निकलती है जो मुझे इस ध्यान से मिला। आई थिंक ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें सब कुछ है, जो आप एक नारी जो चाहती है वो सब कुछ है, उसको अधिकारों के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, उसको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप उसको मिल जाएगा, और दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एम्पावरमेंट।
तो ये जो एम्पावरमेंट है, यानी कि ये जो शक्ति है जो कि प्रेम से हमारे अंदर उजागर होती है, हम पूछेंगे सुनीता जी से। सुनीता जी, इस प्रेम को आपने अपने परिवार में, अपने बच्चों में, खासकर जब आपके अंदर बहुत गुस्सा आ जाता है कभी कभी सामाजिक प्रेशर से, सामाजिक उससे, सामाजिक हर तरीके के प्रेशर जो नारी के ऊपर आती है, माँ के हिसाब से, एक गृहिणी के हिसाब से, सामाजिकता के हिसाब से, आप उसको किस तरह से हैंडल करेंगी, ये हम पूछेंगे आपको थोड़ी देर में एक ब्रेक के बाद। दर्शकों कहीं मत जाइए, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे।
सहन शक्ति इतनी अच्छी सुंदर है, हमारी वैल्यू ये जो है ना, इतना अच्छा गंभीर श्याना बना देती है। जब सहन शक्ति है, कोई भी बात सामने आई, शरीर में आई, संबंध में आई, धन से आई, तीन से आएगी, शरीर से आएगी, थोड़ी सहन शक्ति है ना तो अंदर आया, ठीक हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, क्या मैं कहती हूँ, ठीक हो जाएगा। जैसे अपने आप को अभी तो दुआ देते, ठीक हो जाएगा। परा सहन शक्ति ईश्वर का भी मदद ले लेती है, हिम्मतवान बना देती है। अच्छा संबंध में कुछ हुआ तो भी ठीक हो जाएगा, तुम ऐसे क्यों कर, ठीक हो जाएगा। बच्चों के साथ भी सहन करने की शक्ति चाहिए, बड़ों के साथ भी सहन करने की शक्ति चाहिए, सम्मान वालों के सहन शक्ति चाहिए। सहन शक्ति सच्चाई और प्रेम का अवतार बना देती है।
दर्शकों एक बार फिर आपका स्वागत है इस बड़े रसपूर्ण चर्चा जो यहाँ पर जारी है, और हम बात कर रहे थे प्यार की, प्रेम की, जो कि हमें ध्यान से ही हमारे अंदर उजागर होती है, ये हमने अभी चर्चा के दौरान देखा। और कैसे, हम सुनीता जी से पूछते हैं और सुनीता जी हमको बताएंगी कि इस ध्यान की वजह से उन्होंने अपने जीवन में प्रेम की इस पराकाष्ठा को अपने संबंध संपर्कों में कैसे आपने इसको अनुभव किया।
यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि जब हम ध्यान में आए, जब हमने मेडिटेशन शुरू किया राजयोग, तो हम पहले अपने आप को शरीर समझते थे, और जो हम अपने संबंध देखते थे वो सब शरीर के नाते से समझते थे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरी माँ है। परंतु जब हमने राजयोग मेडिटेशन करना शुरू किया तो हमें यहाँ पर जो मूल था वो था सोल कॉन्शियसनेस, और सोल कॉन्शियसनेस के आधार से जब हमने सारी शक्तियां परमात्मा की अपने अंदर सजोई, तो सोचा कि जब वो दे सकता है, जब वो प्यार का सागर है, तो क्यों नहीं मैं भी प्यार स्वरूप बन सकती हूँ उसकी तरह। और मैंने उस तरीके से उसके प्यार को इन लोगों में आत्मा समझ कर बांटना शुरू किया, और मैंने देखा कि मेरा निश्चल छल नहीं था उसमें, कोई मैं नहीं था, कोई हमारी इच्छाएं नहीं थी। नहीं तो पहले था कि ये मेरा बेटा है तो ये मुझे इज्जत से बोले, ये मेरा पति है तो मैं जो मेरा अधिकार है वो मुझे इससे चाहिए। परंतु जब मैंने उसको आत्मा समझ कर देना शुरू किया तो वो चीजें सब अपने आप ही ठीक होती चली गई और सहज होता चला गया।
बहुत सुंदर। अब मैं जैसे सुनीता जी ने हमें बताया कि एक सहज और एक बहुत सतत, एक बहुत सरल जो प्रेम की जो उजागर हमारे अंदर से होती है, ध्यान की अवस्था में ही हम उसे अपने आप में पाते हैं। और इस प्रकृति को हम अपने आप में कैसे संजोते हैं, आइए सुनते हैं। आशिमा जी को पूछते हैं कि इन्होंने इस चीज को अपने रिसर्च में कैसे संजोया, इस ध्यान की पावर को।
देखिए, हम रिसर्च तो जैसे पहला भी करते थे, और जब हमने मेडिटेशन करा और उसमें जो रिसर्च में और पहले की रिसर्च में जो डिफरेंस है कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो हमारा दायरा है वो बढ़ जाता है. नहीं तो हम सिर्फ पेपर रिसर्च करके और पेपर बना के दे सकते हैं, उसमें बड़ी बात नहीं है. पर अब ऐसा लगता है कि जो स्पिरिचुअलिटी की वजह से जो हमें पावर्स मिली है, तो उससे जो हम जो भी हम रिसर्च करें उसका कुछ फायदा होना चाहिए सभी वर्ल्ड के लोगों को. ऑफकोर्स जो आपका एरिया है उसमें तो फायदा होगा,
यानी कि आपका सोच काफी विस्तार हो गया है.
एग्जैक्टली, तो एक एक्सपेंशन हो जाता है आपके सोचने के तरीके में भी और आपके काम करने के तरीके में भी, क्योंकि अभी लिमिट्स के बाहर है.
सो लव मेक्स यू एक्सपैंडेड एंड मेडिटेशन भी आपको एक्सपैंड करने में हेल्प करता है.
बेसिकली यू डोंट नो व्हाट लिमिट्स आर, देन यू आर जस्ट बियॉन्ड लिमिट्स. सो व्हेन व्हाट एवर वर्क यू डू, व्हाट एवर यू नो, व्हेन यू कम इनटू इंटरेक्शन, सो आप यू जस्ट
लिमिटेशन की बात पर एक बात पूछना चाहूंगी डॉक्टर उषा करण जी से कि लिमिटेशन यानी कि हमारी ग्रॉस बॉडी, हमारी फिजिकल बॉडी, और हमारी फिजिकल बॉडी को हम कैसे ध्यान के स्वरूप में हमारी कॉन्शियसनेस से, यानी कि इस पूरे चेतना की जागृति के लिए आप कैसे मेडिकल प्रोफेशन में रहते हुए उसको मिलाती हैं, जय इसके बारे में.
क्योंकि पिछले 20 वर्ष से मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हूं और इस हॉस्पिटल के अंदर हम बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं और उसमें हमने मेडिटेशन के ऊपर भी रिसर्च किया है, जैसा कि आप जानना चाहते हैं. और इस रिसर्च के अंदर हम माइंड बॉडी कनेक्शंस के ऊपर रिसर्च करके और हम इन सब रिजल्ट्स पर निकले हैं कि जिसमें हमने बहुत सारी बीमारियां जो स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल फीलिंग्स, एक दूसरे के प्रति ऐसी भावनाएं जिसके कारण हमने देखा कि ऑलमोस्ट 80-90% में ये सब इन्वॉल्व है, जिसको हम कहते हैं साइको सोशल एंड साइको फिजिकल इन्वॉल्वमेंट. तो उसके अंदर, बल्कि मैं इतना ही कहूंगी कि हर प्रॉब्लम के अंदर एक उसका एलिमेंट जो उसके ऊपर मन के ऊपर प्रभाव डालता है और उसके परिवार के ऊपर प्रभाव डालता है, इस पर हमने मेडिटेशन यानी हॉस्पिटल के अंदर एक मेडिटेशन रूम बनाया हुआ है. बहुत हाई लेवल पे इस पर रिसर्च किया जिसमें 500 पेशेंट्स जिनको क्रॉनिक हेडेक रहती थी, सिर दर्द, और ये रिसर्च हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ग्रांट के साथ, और उनमें से उनका 15 साल पुराना सिरदर्द भी एकदम ठीक हो गया है, जो कि उनके हस्बैंड बोलते थे कि परिवार टूट जाएगा, घर में खाना नहीं बनता है. बच्चा कहता था मैंने माँ के हाथ का खाना खाया ही नहीं, घर आता हूँ तो सिर बांध के माँ बैठी होती है, और सबके सिरदर्द ठीक हो गए.
इस रिसर्च से आपने जितने भी केसेस सॉल्व किए हैं, क्या आपको लगता है कि सारे केसेस ध्यान की अवस्था में जाने में या ध्यान करने में उनको काफी लाभ मिला है?
100%, क्योंकि इसको हमने प्रूव किया. फिर इसमें जो ब्रेन में हार्मोन्स बन रहे हैं जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन और बीटा एंडोर्फिन हार्मोन, ये हमारे ब्रेन के अंदर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं. इसके लेवल्स को टेस्ट किया बिफोर मेडिटेशन एंड 3 मंथ्स आफ्टर मेडिटेशन. तो इससे बिल्कुल प्रूफ हो गया है कि जो ये अंदर एबनॉर्मल हो गए थे और इसकी वजह से एक नहीं बहुत बीमारियां बनती जा रही थी.
यानी कि आपका ये कहना है कि ध्यान ही एक ऐसा पावर है जिससे हमारे मॉलिक्यूलर जो पावर है वो भी हमको पावरफुल बनाती है, और जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो आपके अंदर प्राकृतिक पावर है एक नारी होने के नाते, वो नारी भी अपने अंदर सशक्त होती जाती है. और उस सशक्तिकरण से, उस एम्पावरमेंट से दर्शकों अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि ये बहुत सुंदर चर्चा रही जिसमें हमने प्रेम की बात कही, जिसमें हमने आपने डॉक्टर साहब ने हमको बताया कि कैसे ये मॉलिक्यूलर चेंजेस हमारे अंदर ध्यान की अवस्था में होते हैं. और ध्यान एक ऐसा शब्द है जिसको हम लोग सब बचपन से सुनते आए हैं, बेटा ध्यान से करो, बेटा ध्यान से करो, यहां ध्यान से जाओ, ये ध्यान से करो. मगर हमें कभी ये एक्सपीरियंस जब तक हम नहीं करते कि ध्यान क्या है, और ध्यान की एक्सपीरियंस करने के लिए आपको थोड़ी देर अपने अंदर जाना पड़ेगा, अपने अंदर जाकर देखना पड़ेगा. और वही मैं समझती हूं नारी को पावर करने में, एम्पावर करने में, नारी को नारी से शक्ति और शक्ति से सशक्त बनाने में एक यही ध्यान है जो कि हमें अपने आप में उजागर करना है. और जगह जगह कहीं पर भी आप इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप इस व्यवस्था को, अवस्था को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. और इसके साथ ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं. नमस्कार.